आइए पारे पे चलते हैं। आज का पारा बड़ी मोहब्बतों के साथ की हुई कुर्बानियों से शुरू हो रहा है। अगर इसको पिछले पारे के साथ जोड़ दें तो पिछली आयत जो बिल्कुल आखिर की थी पारे में, वहाँ क्या था कि क़यामत का दिन होगा और लोग ज़मीन भर सोना देकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहेंगे, लेकिन उनसे कबूल ना किया जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, पर जब वक्त गुजर गया तो उसके बाद फिर क्या कहना। तो आयत क्या थी? इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक्बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबन वलव इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और उसी हालत में मारे गए, बस हरगिज़ नहीं उनसे कबूल किया जाएगा ज़मीन भर कर भी सोने को, अगर वो उसको फ़िदिये में देना चाहे। और फिर बेशक उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और उनका कोई मददगार ना होगा। तो क्या पता चला कि अल्लाह के रास्ते में काम करना, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देना, ये टाइम बाउंड चेक की तरह होती हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो वो चेक कैश नहीं होता। हम दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में ही अब इन आयतों पे जो आगे आने वाली हैं अमल कर लें, वहाँ कबूल नहीं और यहाँ मांगा जा रहा है। ये पारा सूरत आल इमरान की आयत 92 से शुरू होगा और सूरत के एंड तक यानी आयत 200 तक भी रहेंगे, और फिर इसके बाद सूरत निसा की कुछ आयात भी हैं। आइए शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। आयत 92 से, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ भलाई ना पाओगे, और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह ताला इसे बखूबी जानता है। लफ्ज़ तुहिब्बून पे गौर कीजिएगा, ये नहीं कहा कि कीमती चीज़, अल्लाह ने किसी प्राइस टैग की बात नहीं की, अल्लाह ताला ने यहाँ किसी ब्रांड की बात नहीं की, लाखों करोड़ों अरबों की बात नहीं की। क्योंकि अमूमन जब अल्लाह के रास्ते में देने की बात होती है तो लोग उस वक़्त क्या सोचते हैं, अच्छा कितना कीमती दें, हाय हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हाय हम क्या करें। तो अल्लाह ने आपसे मुझसे जज्बात मांगे हैं, लिखिए। ज़मीन आसमान तो उसके हैं, सोना चांदी हीरे मोती उसके लिए पत्थर हैं। जिसने पहाड़ों की तहों में छुपा दिया, उसको अगर देना पड़ता तो वो किसी को भी दे देता, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ आपको मुझे बता दिया कि जिनकी ज़िंदगियाँ एक मिशन वाली ज़िंदगियाँ होती हैं, जो इस दुनिया में मिशन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हैं, वो अपने और अल्लाह के रास्ते की एक एक रुकावट को दूर करते जाते हैं। तो लिहाजा मन पसंद चीज़ें अल्लाह के रास्ते में देने की नीयत कीजिए। सहाबा कराम ने इस पर अमल किया, कोई अपना बाग लेके आ गया, किसी ने अपने बाग को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया, कोई अपने घोड़े ला रहा है, कोई लौंडियाँ ला रहा है। ये किससे हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके, आइए यहाँ नियत करते हैं। अपने आप से सच्चाई के साथ पूछिए, मेरी मनपसंद चीज़ क्या है? ये नींद भी हो सकती है जो छोड़ के आप कुरान सुनने बैठते हैं, ये आपका वक्त भी हो सकता है जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे खाने पका सकते, बहुत पैसा कमा सकते, ये स्किल्स भी हो सकती हैं। तो आइए यहाँ इस नियत से पारा शुरू करते हैं कि अल्लाह मुझसे कोई तो कुर्बानी ले ले, कोई छोटी सी चीज़, ज़रूरी नहीं कि कीमती हो। अपने कपड़ों में सोचिए, अपने जूतों में सोचिए, अपने पर्सों में सोचिए, अपने घर के बर्तनों में सोचिए। आइए आज सदका करते हुए उसको किसी को भी दे दीजिए, पर ख़ास तौर पर फिर अल्लाह के नबी ने जो तरीका सिखा दिया था कि उनको देना, कि जिनको देने को दिल ना करे, ये और भी अजर का ज़रिया है। फिर आगे बनी इसराइल की कुछ कहानियाँ। तौरात के नज़ूल से पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बोहतान बांधें वही जालिम हैं। कह दीजिए कि अल्लाह ताला सच्चा है। इसको नोट कीजिएगा, अल्लाह की सच्चाई। कुल सदकल्लाह फत्तबियु मिल्लत इब्राहीम हनीफा। बस तुम सब इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो जो मुशरिक न थे। और दुनिया में पहला घर कौन सा बना जिसकी बात यहाँ की जा रही है, और वो क्या है? इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है। जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खुली खुली निशानियां हैं, मुकाम इब्राहिम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जो इसकी तरफ राह पा सकते हो इस घर का हज फर्ज कर दिया, और जो कोई कुफर करे तो अल्लाह ताला इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। इस आयत के अंदर नोट कीजिएगा, इस्तेतात होने के बावजूद भी खाना काबा का हज ना करना, अल्लाह ने इस आयत में उसको कुफर कहा, क्योंकि ये नाशुक्री है। सब जगह तुम जाते हो, रुकते हो, लेकिन खाना काबा और अल्लाह के घर जाने की तुम्हें तौफीक क्यों नहीं होती? और यहाँ आपने नोट किया, अल्लाह ताला ने बरकतों की बात की है कि इस घर में बरकत है, बहुत सारी बरकतें तो जो हैं ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बक्कत मुबारक ही आया तुम बैनात के साथ वमन दखल हु काना आमिन, ये सारी बातें कहकर क्या बता दिया कि यहाँ बरकतों के खजाने हैं। क्या बरकतें हैं इस घर की, एक नमाज का अजर 1 लाख नमाजों के बराबर, इससे बड़ी बरकत और क्या होगी। और यहाँ आकर इंसान अपने जब अल्लाह के सामने राजो न्याज करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो कैसे अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देता है। टेंशन फ्री जोन है ये, ऐसी जगह है कि जहाँ आकर जाने को दिल नहीं करता, एक बार आना काफ़ी नहीं, बार बार आने को दिल करता है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बार बार इस घर का तवाफ़ करने की और इधर पहुंचने की तौफीक दे, और जो लोग दूर बैठे हैं अल्लाह ताला उनके लिए सवाब पैदा कर दे। ठीक है हम करीब बैठे हैं, हम जा सकते हैं, अल्लाह मेरे ले जा भी जाए और कबूल भी करे, लेकिन बात यह है कि जो नहीं आ सकते, असबाब पूरे नहीं, तो इधर उधर की चीज़ें करके छूट सा जोड़ करके आने की ज़रूरत नहीं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो आमाल हैं उनका दारोमदार नियतों पे हैं। आप आ नहीं सकेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए बग़ैर आए वहाँ अजर के ख़जाने रखने पे कादिर है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, आयत नंबर 98, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह, ए अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों के साथ कुफर क्यों करते हो? जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इस पर गवाह है। इन अहले किताब से कहो, तुम अल्लाह की राह से लोगों को क्यों रोकते हो और इसमें ऐप टटोलते हो? हालांकि तुम शाहिद हो, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं, अपना मुहासबा करते हैं। बातें तो दूसरों की हो रही हैं, लेकिन पढ़ और सुन तो मेरे हैं। क्या मैं लोगों को अल्लाह की राह से रोकती हूँ या मैं लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाती हूँ? याद रखिए, शैतान का वार क्या है कि ना ये कुरान कोई सुने और ना कोई सुनाए, और जो सुन सुना रहे उनके बारे में शकूक व शुबहात में डालकर खैर के रास्ते को रोक दें, अल्लाह में शैतान की चालों से बचा दे। फिर आगे ईमान वालों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बाद मुर्तद यानी काफिर बना देंगे। 2 सेकंड गौर कीजिए, उनके रंग रंग इख्तियार करना, उनकी रस्में, उनके तौर तरीके अपनाना कहीं हमें इस्लाम से ना निकाल दे। कितने ही लोग हैं बाहर के मुल्कों में लीगल होने के लिए वो काम कर जाते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की निगाहों में हो सकता है वो इलीगल हो जाए। फिर इसी तरह इन आयात पे अगर तदब्बुर करें तो आयात पे अमल क्या है, नेकी के आला मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना महबूब तरीन माल अल्लाह की राह में खर्च करें। याद रखिएगा कि उम्मत मुस्लिमा को दूसरे पारे के शुरू में एक ऑनर दी थी, एक जिम्मेदारी दी थी, क्या कि तुम कौन हो, उम्मत वसत हो। आज इस बारे में 2 आयात आगे आने वाली हैं जहाँ आपको मुझे यही बात याद दिलाई जाएगी। तो जिनकी ज़िंदगी बामकसद होती है वो अपनी मनपसंद चीज़ों का हक दे नहीं पाते, वो घरों में अगर टिक जाएंगे तो अल्लाह का दीन कैसे फैलेगा? अगर वो कारोबार, तिजारत, माल दौलत, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी खुशियाँ गमों को इतना बढ़ा देंगे कि एक एक शादी की तैयारी 6 6 माह पे चली गई, एक एक घर बनाने में लाखों करोड़ों लग गया, तो बताइए फिर अल्लाह के दीन को कौन देगा? तो अल्लाह आपको मुझे कबूल कर ले, यहाँ अपना आप अल्लाह को दीजिए, आपको अपना बहुत पसंद है। इंसान को सबसे ज्यादा अपना पसंद होता है, तो कही अल्लाह मैं तेरी, इन्हीं लिल्ला, आई ओव नथिंग, आई ओन नथिंग, अल्लाह मैं भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरा घर भी तेरा, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरी स्किल्स, मेरी खूबियाँ सब तेरी, बस कर क्या, रब्बना तकबल मिन्ना, अल्लाह कबूल कर ले हमसे। फिर अल्लाह से मदद मांगते हुए बैतुल्ला पहुंचने की बाकसरत दुआ कीजिए। इसी तरह से हमने अपने ज़ाहरी हाल हुलिये से भी यहूद व नसारा की मुखालफत करनी है, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं होंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। होना होता तो अब तक वेस्ट में रहने वाले उन सारे मुसलमानों से हो चुके होते कि जिन्होंने लिबास बदल लिया, नाम बदल लिए, हाल हुलिये बदल लिए, नामों में से लफ्ज़ मोहम्मद को निकाल दिया, लेकिन वो खुश नहीं हुए। कुरान पाक से रहनुमाई, इंसान अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च करके ही हकीकी नेकी पाता है। शायद इसीलिए अभी तक हमारे अंदर वो रूहानियत नहीं आ रही, वो तासीर नहीं आ रही कि हम पढ़ते पढ़ाते तो हैं लेकिन अपनी मनपसंद चीज़ें कुर्बान नहीं करते। फिर लोगों को भलाई के कामों से रोकना गुमराह लोगों का तरीका है। दीन और तरीक़ा ज़िंदगी में गैर मुस्लिमों की पैरवी नहीं करना। गौर व फिक्र के चंद गोशे लीजिए, अपना अफसल माल खर्च करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। तौरात में ना पाई जाने वाली हराम करदा चीज़ों की खबर देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत था, क्योंकि आप तो उस वक़्त थे भी नहीं जब ये किताबें नाजिल हो रही थी। इस पे गौर कीजिएगा, कितनी बड़ी सच्चाई है प्यारे नबी, हमारे नबी की सच्चाई की। तो सिराजम मुनीरा की गवाही इस आयत से आपको मिल गई कि आप ने पिछली किताबों में जो बातें थी उनकी भी खबरें दे दी। फिर इसमें खाना काबा की बात हुई, तो खाना काबा पहला घर था दुनिया में। फिर इबादत के जारी रहने पर दीगर मसाजिद पर इसको फजीलत हासिल है। बैतुल्ला की बरकत देखिए कि एक नमाज का अजर 1 लाख नमाजों के बराबर है। कई गुना सवाब है, गुनाहों की माफ़ी का वादा है। इधर इबादत दिन रात जारी रहती है। अल्लाह को अपने इस घर को आबाद रखना है। फिर यहाँ हर किस्म के फलों की दस्तियाबी है। अबरहा के लश्करों को हलाक कर दिया और सरकश और जाबिर लोग यहाँ आकर टूट जाते हैं, इसीलिए इस शहर को बक्का भी कहते हैं। इतनी बड़े बड़ों की अकड़ को ये तोड़ देता है, तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया। और यहाँ जा नहीं सकते गैर मुस्लिम, सरकशों को यहाँ जाना नहीं, ये सारी बरकतें हैं। फिर मुकाम इब्राहिम की बात हुई, आबे जमजम की बात हुई, आज हमने इसी पे मोहम्मद अरबी में ये बात सुन ली। आचे चश्मा किस तरह से उबल रहा है। याद रखिए अल्लाह की चीज़ें दायमी होती हैं, वो फ़ायदा देती ही रहती हैं। आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, जमजम, इसी तरह दुआ कीजिए अल्लाह हमसे खैर के वो बीज लगवा ले कि जहाँ फसलें उगती रहें, खैर के वो चश्मे फूटें जो हमारे बाद भी दुनिया को खैर का जमजम देते ही रहें। इसी तरह इस्तात के बावजूद हज ना करना ये नेमत की नाकदरी है, अल्लाह ताला इससे बचा दे। आगे आयत 101 से 108, व कैफ तकफुरू नवान तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु। इस आयत को भी नोट कीजिएगा, सिराजम मुनीरा की बरकत जो उनकी मौजूदगी को अल्लाह ने यहाँ मेंशन किया। गोया ये जाहिर है कि तुम कैसे कुफर कर सकते हो बावजूद इसके कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूत थाम ले तो बिला शुबा इसे राह रास्त दिखा दी गई। जरा सोचिए वो वक्त, मदीना था और मोहम्मद भी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बावजूद कुछ लोगों को हिदायत ना हुई, तो फिर आज अगर किसी को ना मिले हिदायत तो क्या कहने। लिहाजा अल्लाह के नबी का वजूद जिस तरह खूबसूरत था और वो बायसे बरकत था, इसी तरह आज उनका पैगाम, उनका कुरान और उनकी छोड़ी हुई तालीमात भी बबरकत हैं। इसीलिए ईमान वालों को खिताब किया, अहम आयत इस पे कान रखिएगा, या अय्युल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से इतना डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। क्या खूबसूरत बात है। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो। दूसरी नसीहत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो। और अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के घड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो इसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पालो। इसलिए अब क्या होना चाहिए। तीसरी बात, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ लाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। और क्या ना करो, अगला हुक्म, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू। तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तलाफ किया। इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है जिस दिन बास चेहरे सफेद होंगे और बास सिया। सिया चेहरे वालों से कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया। जरा गौर कीजिए। नबी को ना मानना, नबी के सुन्नत तरीकों को ना मानना, ईमान लाने के बावजूद कुफर पे रहना है। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या सजा दी जा रही है? अब अपने कुफर का मजा चखो, जो तुम करते थे, जो करा चुके, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यानी अब तुम अपने इस कुफर का मजा चख लो और सफेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। ऐ नबी, हम इन हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह तआला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। खूबसूरत पैरा था, पूरा का पूरा उम्मत वसत के लिए। तदब्बुर और अमल के नुक्ते नोट करते हैं। पहली बात देखिए कि इस हिस्से में हमें अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि वमैयातसिम बिल्लाही फ़क़द हुदिया इला सिराते मुस्तकीम। इत्तहाद के फवायद और इख्तलाफात के नुकसान पर लोगों को आगाह करना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। ऐसे लोगों के लिए दुआएं किया करें कि अल्लाह इनकी हिफाजत करना और अल्लाह इनसे सही बात करवाना। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया जब जिहाद फी दुनिया करने के शौक में हो, तो वो लोग जो जिहाद फी सबीलिल्लाह करें, कोई मैदान जंग में जाके, कोई मैदान इल्म में जाके, कोई काफिरों के सर जिस्म से उतार के और कुछ काफिरों के सरों से इस्लाम की दुश्मनी निकाल कर, तो आपका मेरा उनके बारे में क्या होना चाहिए? आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह तौबा और अनफाल के करीब, कैसे लोगों का वजूद पूरी इंसानियत को अल्लाह की पकड़ से बचा लेता है। तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, असल बात यह है, यही उम्मत का मकसद तासीस है। जैसे लोगों को किसी भलाई का हुक्म दें और किसी बुराई से रोकें, लेकिन अल्लाह के लिए अंदाज दुरुस्त रखिए। छुरी भी पकड़ते हैं तो दस्ते से पकड़ते हैं, अगर आप उसको हैंडल की बजाय उसके फल से पकड़ लें तो आपका अपना हाथ कटेगा। आज तबलीग के नाम पर हथौड़े बरसाए जा रहे हैं, फिर इल्ज़ाम भी लोगों पर डालते हैं कि लोग नहीं सुनते और लोग बुरे, लोग बुरे। तो कुरान पाक से रहनुमाई क्या मिली? कुरान पाक पर तदब्बुर और सुन्नत पर गौर करके अमल करना, यही चीज़ दीन पर साबित कदम रखती है बंदे को। बाकी चीज़ें सब सबके लाके हैं। साबित कदमी की दुआ करें ऐसे हाल में कि मौत ना आए, कि हम किसी गलत काम में मसरूफ़ हों। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको मुझे हमारी मौत का वक्त नहीं बताया ना, क्यों नहीं बताया? कि किसी भी वक्त मौत आ जाएगी, सोच के साथ किसी छोटे से छोटे बुरे काम से भी बच जाओ। क्योंकि अगर पहले से पता होता तो हम भी होशियार बनते, गलत काम करते रहते और उस मौत के वक्त से पहले बड़े बच्चे बन के अच्छे से बन जाते। जैसे बच्चे माँ बाप के आने पे ऐसे भोले बन जाते हैं जैसे पीछे से कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ने आपको मुझे बता दिया कि ऐसा तुम मामला अपने साथ ना करो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो बात हो रही है कि तुम अल्लाह से इतना डरो जितना उसे डरने का हक है, तो ये भी चीज़ सामने रखने की है, क्योंकि अल्लाह ताला से डरने का हक तो कोई अदा कर नहीं सकता। इसीलिए नफ्स परस्ती पर मबनी इख्तलाफ के नतायज बुरे होते हैं। अक्सर हमारे इख्तलाफ कुरान सुन्नत के नाम पे होता है, लेकिन उसमें हमारा अपना नफ्स भी आ जाता है। अल्लाह ताला हमें नफ्स परस्ती से बचाए। गौर व फिक्र की चंद बातें, सेहत और सलामती की हालत में अल्लाह की इबादत करें ताकि अच्छे काम के दौरान मौत आए। जो काम ज्यादा करेंगे ना, उम्मीद की जाती है कि उसी पे मौत आएगी। जो रोजे ज्यादा रखते हैं, उम्मीद है कि जब फौत होंगे तो रोजे ही की हालत में होंगे। जो सफर में ज्यादा है तो उम्मीद होती है कि सफर में मौत आएगी। तो अपने आप को हर दिन ये कहकर निकाला करें घर से कि अगर मुझे मौत आ गई तो क्या मैं अल्लाह के रास्ते में ईमान और इस्लाम वाली मौत पे हूँ। हमेशा जमात बना कर रहें, इस तरह जैसे तीरों का गट्ठा रस्सी से मजबूत बंधा जाता है, हर तीर दूसरे से जुड़ा रहे। आज उम्मत मुस्लिमा को जो भूला हुआ सबक याद दिलाना है वो क्या है? इत्तफाक में बरकत है, इत्तेहाद एक ताकत है। आप बचपन से ये कहानियां सुनते आए कि एक बाप ने एक एक लकड़ी तोड़वाई और जब उसको गट्ठर बनवा दिया तो फिर वो नहीं टूट सकी। आज उम्मत फिरका वारियत के जहर में मुबतला हो चुकी, आज इख्तलाफात इतने हो गए, जरा सी छोटी छोटी बात के ऊपर अलहदगी, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। आगे इंशाल्लाह एक पूरा पैरा आ रहा है इस बारे में, जिसमें हम भरपूर बात करेंगे कि क्या लोगों की तरबियत के अंदाज हैं और कैसे सिराज मुनीरा ने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को तैयार किया, कैसे वो बिखरी हुई छोटी छोटी शाखों से निकलकर एक मजबूत गठ बन गए और कैसे टीम वर्क के साथ उन्होंने इस दुनिया में इस्लाम को फैलाया। आज भी दीन के कामों के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत है। तो अपने लोगों में कभी किसी को अलग ना किया करें। जब आपको पता चले कुछ जरा सा कटा कटा रह रहा है, अलग हो रहा, प्यार से मोहब्बत से अच्छी सी कोई बात कह के उसको वापस ले आए, उसे ढील ना दें, इसके मामले को मामूली ना समझिए। कुछ नहीं, बहुत लोग हैं हमारे पास, बहुत हैं, जाने दो। ये रौनत होती है, ये तकब्बुर होता है। नहीं, गफलत ना बरतें। किसी साथी को चंद दिन आता ना देखे फौरन देखें। आप स्टूडेंट्स हैं ना, अब आप देख रहे हैं कि रोज आता है, कोई आज नहीं है, फिक्र लग जाए, हाय वो क्यों नहीं आया, उसको पूछ लूं, हाय वो जल्दी नहीं आया, देर से आ रहा है, क्या हो गया। यानी ये जो मोमिन होता है ना, ये लिया दिया नहीं रहता, हर वक्त अपने ही शहर में गुम नहीं रहता। अल्लाह के नबी लोगों में दिलचस्पी लेते थे, उनका मामला राह रस्म बढ़ाने का था, और इसी तरह ऐसी लीडरशिप ने लोगों को जोड़ा। लोगों को मोहब्बत चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे भी आज अमल करना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। फिर इसी तरह से जन्नत का इनाम और बदला भी अल्लाह की रहमत से मिलेगा। इन आयतों में अल्लाह ने रहमत के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जन्नत की जगह रहमत, इन इस बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोग अल्लाह की रहमत में होंगे। आयत नंबर 107 को नोट कर लें, फ़फ़ी रहमत इल्ला, हमारे सलफ सालेहीन और आइमे कराम का कौल है कि यहाँ वफ़ी रहमत इल्ला से मुराद फ़फ़ी जन्ना होगा, क्योंकि जन्नत अल्लाह की रहमत है। फिर इख्तलाफात की बात है, तो फिरोई मसाइल में इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इससे मेलजोल और इत्तफाक में कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अकीदे में इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं है, जड़ों में इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं है। फिर यहाँ अल्लाह के डरने की बात है, इस पे एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ उसको मंसूब किया जाता है। किसी ने उनसे पूछा कि अल्लाह से डरने का हक क्या है जो कहा गया इस आयत में, तो उन्होंने बहुत ही प्यारी इसकी तफसीर की। कहते हैं, अल्लाह से डरने का हक ये है कि इसकी इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए, इसका शुक्र अदा किया जाए, नाशुक्री से बचा जाए, और इसे याद रखा जाए और भुला ना दिया जाए। अल्लाह ताला हमें इसी की तौफीक अता फरमाए, और हम जुड़कर उम्मत बनकर रहें, भीड़ बनकर न रहें, अल्लाह की नेमतों की कदर करते रहें, और अल्लाह ने हमें जो प्यारा नबी दिया, हम उसके नक्शे कदम पे चलते रहें। आगे आयत 109 से 115, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाते हैं सब काम। फिर उम्मत को बता दिया, आपको आज बड़ी खुशी होनी चाहिए इस बारे को सुनते हुए कि बार बार उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह खूबसूरत लकब दे रहे हैं। क्या, कुन तुम खैरा उम्मत अखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बस इतना ही, खुश, फख्र? ना ना ना, खुशफहमियों की जन्नत नहीं। आगे काम भी तो देखिए, क्या जिम्मेदारियां दी गई। जब भी किसी को कोई बड़ा बनाया जाता है, उसको कोई काम दिया जाता है, तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तुम बेहतरीन थे या बेहतरीन हो, कब तक? जो लोगों के लिए पैदा की गई शरायत क्या है? तुम नेक बातों का हुक्म करते रहो और बुरी बातों से रोकते रहो, और अल्लाह पर ईमान रखते रहो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो इनके लिए बेहतर था, इनमें ईमान लाने वाले भी हैं, लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। ये तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते। गैर मुस्लिमों की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के लिए इनफरादी या इज्तमाही तौर पे जो जज्बात हैं, दिल खोल कर जो वो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, या दिलों में छुपाते कॉन्स्पिरेसीज होती, या ऐसी चीजें जो वो साजिशों में रखते, इन सारी आयतों को तवज्जो से सुनिएगा, कैसे अल्लाह ने उनके पोल खोल दिए। दोबारा सुनिए आयत 111, ये तुम्हें सताने के सिवा और कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किए जाएंगे। इन पर हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो। ये गज़बे इलाही के मुस्तहिक हो गए, और इन पर फकीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते थे और बेवजह अम्बिया को कत्ल करते थे। ये बदला है इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का। अच्छा, सभी ऐसे नहीं, अल्लाह का इंसाफ देखिए कि जब किसी की बुराई आए तो साथ ही एक और बात कह दी कि अब सबको बुरा ना कहो। लैसु सवान मिन अहलिल किताब, ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं, जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। लिहाजा जो ये सब कर लेंगे तो वो कौन है? जिनकी ये बात अल्लाह ने आपके मेरे सामने रख दी, वाउलाइका मिनस सालेहीन, ये नेक बख्त लोगों में से हैं। और जो कोई कर रहा है तो किसको फायदा होगा? इसका जवाब 115, वमा यफ़लु मिन खैरिन फलन युकफरूहु वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। और ये जो कुछ भी भलाइयां करें इनकी ना कदरी ना की जाएगी, और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। क्या आपको कुरान पाक एक डायलॉग नहीं लगता? मेरा तो उर्दू पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता, जब अरबी पढ़ते हैं और देखते हैं तो दिल करता है कि अल्लाह आपने जो बात कही हम इसका जवाब आपको इसी जुबान में दें। लेकिन आइए ज़रा तदब्बुर और अमल के कुछ नुक्ते लेते हैं इन आयात से। पहली बात क्या है? किसी भलाई का हुक्म या किसी बुराई से मना करना है दिल के दर्द के साथ, किसी को चिड़चिड़ा कर नहीं बल्कि उसको इज्जत देकर। तो अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में, इर्द गिर्द वालों में देखिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है, बशरी तकाजे हैं, करेंगे। याद रखिए हम फरिश्तों में नहीं रहते, इंसानों की दुनिया है, हमारे घर वाले भी इंसान हैं, हम जिनके साथ चलते उठते फिरते हैं वो भी इंसान है, दीन का काम करने वाले भी इंसान होते हैं, कोई फरिश्तों की जमात से काम नहीं करती। तो अगर किसी में कोई कमी बेशी देखें तो प्यार से मोहब्बत से बात कीजिए, फिर इस तरह जानते बूझते सरजद होने लगे गुनाह फौरन छोड़ दें, क्योंकि गुनाहों से जिल्लत आती है। चलिए आप चंद सेकंड गौर कीजिए, मैं भी। कौन सी बुरी आदत जानते बूझते अपनाई हुई है? आज यहाँ इस नीयत के साथ इस आयत को सुनते हुए इरादा करती हूँ कि उसको छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, और अल्लाह तो हम सब की मदद कर हमें हमारी बुराइयों को छोड़ने पे। हर एक में होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, किसी की नजर आती किसी की नहीं आती, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर से नहीं पता चलती करीब में आती हैं, क्योंकि वह खुलिकल इंसान दईफा। तो अल्लाह हमारी सब की बशरी कमी बेशियां दूर कर दे। फिर इसी तरह लोगों में उलमा और सालेहीन के एहतराम को उजागर करें, क्योंकि ये किसी भी मुआशरे के पिलर्स होते हैं। इन लोगों के मजाक करने, लतीफे बनाने, इनके खिलाफ बातें मारूफ कर देनी, या कभी इनके खिलाफ कोई ऐसी चीजें दुनिया को दिखानी बतानी कि जिसके साथ इवन वो उलमाए कराम जिनकी जिंदगियां दीन पे लग गईं वो भी लोगों की नजरों में मशकूक हो जाएं, ऐसी सारी चीजों से बचते हुए जितना तावन कर सके तावन करें। दुआएं तो कर सकते हैं कि अल्लाह इस उम्मत के बड़े बड़े उलमा की हिफाजत फरमाना। फिर कुरान पाक से रहनुमाई क्या मिली? उम्मत में खैर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और अल्लाह को याद रखने से पैदा होगी। यहाँ नोट कीजिएगा, अल्लाह के नबी से लेकर तकरीबन 1000 साल यानी 10 सदियों तक उम्मत खैर पे थी। वजह क्या थी? अमर बिल मारूफ भी था, अल्लाह की याद भी थी। जब हम दुनिया परस्त हो गए, वहन की बीमारी आ गई, तो ये पिछले तकरीबन 400 साल से उम्मत की ना दुनिया में इज्जत रही ना कहीं दीन के नाम से इज्जत रही। लिहाजा हमारा काम क्या है? जमातों और अफराद पर कोई भी हुक्म लगाने में इंसाफ से काम लेना शरई फरीज है। आप जिस चीज़ को सही समझते हैं उसको समझिए, आपको कोई भी उससे नहीं रोकता, लेकिन उसको कुरान सुन्नत की रोशनी में देखिए कि वो बात दुरुस्त है कि नहीं। किसी से फिकी इख्तलाफ हो सकता है, किसी से फिरके वाराना इख्तलाफ हो सकता है, किसी से नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तलाफ हो सकता है, तो लिखिए मुखालफत और इख्तलाफ का फ़र्क। इख्तलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं। फ़र्क है, आपका विजन और मेरा और, आपका कद और मेरा और, आपकी आई साइट और मेरी और, यही असूल आप अपने सारे इर्द गिर्द वालों पे लगा रहे तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो लिहाजा इख्तलाफ को मुखालफत में बदलने से माशरे में शर पैदा होता है। फिर ये जो जंगों की बातें, और आगे इसमें 2 जंगों का तस्कर आने वाला है, तो लिखिए जंग शुरू होते ही दुश्मन की कमजोरी जाहिर हो जाती है। अल्लाह ने मुख्तलिफ औकात में जंगों के क्या हालात पैदा किए, इंशाल्लाह आगे गज़वे उहद के बाद में हम बात करेंगे। गौर व फिक्र की चंद बातें। जिहाद मोमिनों के लिए अजर और सवाब और दर्जात की बुलंदी का जरिया है। इसी तरह जिहाद में और बहुत सारे फायदे हैं। जिहाद के जरिए अल्लाह दुश्मनों को भी मौका देता है कि वो इस्लाम का गलबा देखें, या मुसलमानों के साथ इंटरेक्शन हो और इस्लाम कबूल करें। आप सिराज मुनीर की सीरत पढ़कर देखिए कितने लोग मैदान जंग में आकर मुसलमान होते थे, कितने लोग हैं जो मुसलमानों की इज्जत और उनका दबदबा देखकर मुसलमान हो जाते थे। तो मैदान जंग को बुरा मत कहिए, इसलिए कि इसी के अंदर से अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए भी इज्जत रखी है, और दूसरे इंसानों को इस्लाम के करीब आने का मौका भी मिल जाता है। फिर इसी तरह से अल्लाह की नाफरमानी और हद से बढ़ने की सज़ा जिल्लत और मस्कनत की सूरत में मिलती है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आया हो तो सोचिए कहीं मैंने किसी खुशी के मौके पर अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर दी, कहीं मैंने गम के मौके पे कोई नाफरमानी तो नहीं कर दी, कहीं मैंने अपने हुस्न के इजहार में कोई नाफरमानी तो नहीं कर दी। इसी तरह अल्लाह की आयतें और कलाम हिदायत का इल्म लेना दीगर नफली इबादात से अफजल है। अब इस वक्त कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हमारा तज़किया और तरबिया हो रही है। तो अगर आप एक पारे की जगह आधा पारा पढ़ लेते हैं खाली तिलावत का, तो गम न कीजिए, आपका दौरे कुरान का सुनना ही किसी इबादत से कम नहीं। फिर इसी तरह मौत जैसी किसी रुकावट के डर से मोमिन नेक आमाल और रग़बत से करते हैं। दुश्मन हैरान होते थे, ये तो मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। याद रखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात सब करते हैं, इस्लाम ने क्वालिटी ऑफ डेथ सिखाई, यानी तुम्हारी मौत भी इतनी खूबसूरत हो कि लोग उससे हिदायत पाएं। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत के जो दर्जे मिलते हैं ये मौत को खूबसूरत करते हैं। सहाबा करा मौत के तस्करे के साथ मुस्कुरा पड़ते थे, उनके होंठों पे मुस्कुराहट आती थी, उनकी आंखों में चमक आती थी, क्योंकि उनको उसके बाद की दुनिया दिख रही थी। आज जब हमने इस दुनिया को इतना बढ़ा लिया कि जिसके बाद हमारी दुनिया दुनिया दुनिया, और फिर ना वो कहते हैं कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, कुछ इस तरह की बातें लोगों ने की, तो याद रखिए जो मिलेगा अल्लाह की रज़ा और रसूल की इताअत से मिलेगा। आगे देखिए 116 से ऑनवर्ड, इन अल्लज़ीना कफरू लन तुग़नियन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाहि शैया औलाइका असहाबुन्नारि हुम फीहा खालिदून। कुफार को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आएंगी, ये तो जहन्नमी है जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे। ये कुफार जो खर्च करें, इसकी मिसाल ये है कि एक तुन हवा चली जिसमें पाला था, जो जालिमों की खेती पर पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। या अय्युहल्लज़ीना मनु ला तत्तखिज़ु बितानतन मिन दूनिकुम, जरा सा कान खोल कर सुनने वाली आयात है। आज उम्मत मुस्लिमा अमूमी तौर पे मरूबियत का शिकार है, गैर मुस्लिमों के रूप में है, कहीं भी दुनिया में रहें नजरें उन पर लगी रहती हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को ना बनाओ। तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं उठा रखते, वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी अदावत तो खुद इनकी जुबानों से भी जाहिर हो चुकी है, और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी, अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो इन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। कितना बड़ा सच है, यानी तुम उनकी क्रिसमस मनाते हो, वो तुम्हारी ईद नहीं मनाते, तुम उनके वैलेंटाइन मनाते हो और वो तुम्हारे अकीके नहीं मनाते, तुम उनके एक एक नक्श पे कदम रखते हो, वो तो तुम्हें नहीं मानते, वो तुम्हारे साथ रोजे नहीं रखते, कुर्बानियां नहीं करते। आज देखा जाए तो बात तो सच है, क्या उम्मत मुस्लिमा कैसे दौड़ दौड़ के उनके तौर तरीकों को अपनाती जा रही है और वो तो हमारे तरीकों को नहीं अपनाते। और ये सारी बातें भी नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी बात है, और वो क्या, वो नहीं मानते, फिर मोहब्बत कैसी। ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से के उंगलियां चबाते हैं। कह दो कि अपने गुस्से ही में मर जाओ। अल्लाह ताला दिलों के राज को बखूबी जानता है। क्या इस बात को सुन के गुस्सा आया, आना चाहिए, किस पे, अपने ऊपर। दुश्मन से ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा कीजिए, क्योंकि दुश्मनों को अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे लिए हुज्जत नहीं बनाया, हमें बताया, जितना तुम उनके ऊपर बिछते जाओगे वो तुम पे उतना ही गुस्सा खाते रहेंगे। लिहाजा अपने आप पर इस बात को सुनते वक्त कंट्रोल कीजिए कि मैं उनके तौर तरीकों को कितना अपना रही हूँ, मैं उनके रस्म व रिवाज और उनके लाइफस्टाइल को कामयाबी समझती हूँ। एड़ियाँ उछाल उछाल कर हम उनकी तरफ देखना चाहते हैं, फिर उनके अंदर के पोल वो बता रहा है जिसने उनको पैदा किया। आखिरी आयत जो इस मौजू की है उस पर तो और भी गुस्सा आने लगेगा, इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये नाखुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। अब किसी के बारे में आपको पता चले, फैमिली में कोई बंदा है आपकी खुशी पे उसको गम पड़ गया, आपकी खुशी में वो गमजदा, और आपको कोई तकलीफ हुई तो वो कह रहा मजा आ गया, क्या सोचेंगे, कभी भी आप उसका तरीका नहीं अपनाएंगे। तो गैर मुस्लिमों में वो लोग जो मुसलमानों के साथ बुगज और हसद रखते हैं, उनकी ये बातें सुनते वक्त हमें भी देखना है कैसी चीजें सुनकर हम अपने आप को और अल्लाह के करीब कर दें और सुन्नतों पे ले आए। इसीलिए फिर आगे सब्र की वो बेहतरीन किस्म, जिसको अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया और अहदीस में भी है, हजरत उमर का भी कौल है कि सब्र की बेहतरीन किस्म क्या है, अल्लाह के दिए हुए हुक्मों पे अमल करना, फिर उसमें जो तकलीफ है उस पर सब्र कीजिए, या अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका डोंट उस पर सब्र करना। इसीलिए यहाँ सब्र का ये पहलू देखिए क्या खूबसूरत अंदाज से आ रहा है, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो इनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान न देगा। अल्लाह ताला ने इनके अमाल का इहाता कर रखा है। सूरत आले इमरान की आयत 120 को दिल की तख्ती पे लिख लीजिए, वो जितना तुम्हें सताएं तुम उतना अल्लाह के करीब होते जाओ, उतना सुन्नतों के करीब, उतना रब के करीब आते जाओ, उतना नबी सल्लम के रंग को अपनी ज़िंदगी में अपना लो। आज के मुसलमानों को यही सबक है। आज आप और मैं देखें, बच्चा जब तकलीफ़ में आता है तो माँ के करीब आता है ना, हमें भी जब कोई तकलीफ़ें आए तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के और करीब आना है। अब इन आयतों पर ज़रा सा गौर व फिक्र करते हुए अमल की बात देखें, मुशरिकीन के माल और जायदादें और ओहदे क़यामत के दिन के किसी काम नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को नहीं माना और क़यामत को नहीं माना। जो अल्लाह की इबादत में मददगार हो इसे करीब कीजिए, जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे उससे दूर हो जाए। अपने हल्के अहबाब को देखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, अच्छी सोहबत एक दिन बंदे को अच्छा बना ही देती है। फिर साथियों को नेमत मिलने पर मुबारकबाद दीजिए और मुसीबत आने पर तसल्ली दीजिए। इस वक्त नोट कर लें, फैमिली में किसी के घर को खुशी आई और आप मुबारक देना भूल गए, अभी नहीं पारे के बाद, क्लास के दौरान ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आपके इल्म में खलल आ जाए। इसी तरह अगर किसी के कोई गम कोई तकलीफ थी तो उसको उस पे तसल्ली देना, ये भी हमारे दीन का हिस्सा है। तो मुसलमान दिया दिया नहीं रहता, दूसरों की खुशी में खुश और गम में गमजदा होता है। रहनुमाई के नुक्ते लेते हैं, गुनाह मुसीबतों के आने का सबब बनते हैं, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम पे मुसीबतें ना आए तो गुनाहों को छोड़िए, और अगर कोई मुसीबत आ गई है तो किसी गुनाह से तौबा कीजिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल कर और मुझे इस बीमारी इस परेशानी इस औलाद के गम इस बीवी के गम इस शोहर के गम से निजात दे दे। फिर अकलमंद मुसलमान मोमिन को ही अपना राजदान बनाता है, ये नहीं कि हर एक के साथ दिल की बातें कर दी जाएं। दुश्मन से मुकाबला और हिफाजत तकवा और सब्र से हासिल होती है, इसीलिए जितना हम सब्र और तकवा को अपनी ज़िंदगी में लाते रहेंगे उतना अल्लाह की मदद भी हमारे शामिल हाल होगी। गौर व फिक्र की चंद बातें, गैर मुस्लिमों से गहरी दोस्ती नहीं करनी, याद रखिए ताल्लुकात के दर्जे हैं, मवासात है कर सकते हैं, हमदर्दी का ताल्लुक, मामलात हैं कर सकते हैं, डीलिंग लेना देना, लेकिन बिताना नहीं होगी, विलायत नहीं होगी, उनके रंग में नहीं रंगेंगे। दिलों के कीने और बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह ने मुशरिकीन को मददगार और मावेनीन बनाने से मना कर दिया है, क्योंकि याद रखिए कि आप दिल से किसी भी दुश्मन को अपना दोस्त नहीं समझ सकते। इसलिए ऐसे लोगों के साथ राहो रस्म तो ठीक है, लेकिन इनको जंगी रास देना, इनको इस्लाम की कुछ ऐसी चीज़ें बता देना जो बाद में फिर हमें ही नुकसान दे, इससे बचने की ज़रूरत है। सब्र और तकवा ना करना, मुसीबतों और परेशानियों को बुलाना है। जो साथी किसी मुश्किल में है वो इस पे गौर करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरंदेशी बुलंद हिम्मती अज़्म और बहादुरी से जंगी इंतजामात किए, लिहाजा अब अगली आयतें लिख लीजिए, आयत 121 से चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, जहां अल्लाह रोकेगा गज़वे उहद, और बीच में थोड़ा सा गज़वे बदर का इशारा। यहाँ आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्वे आलम के तौर पे बहसियत कायद भी दिखेंगे। आज आपको अल्लाह के नबी का वो रूप दिखेगा कि जिसको कहते हैं कि मुश्किलात में डालकर मसाइब में डालकर किसी को परखना, आजमाइशों में डालकर किसी को लेना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत कायद भी आज आपको इस बारे में दिखने वाले हैं। आप एक अजीम इंसान के रूप में दिखेंगे, आप पुरउम्मीद शख्सियत दिखेंगे, कैसे लोगों के हौसले टूट गए गज़वे उहद में लेकिन आपके नहीं टूटे। आप राजी पर रजा रहने वाले सब्र करने वाले भी दिखे, और फिर आसानियां बांटने वाले दिखेंगे, खुशखबरियां देने वाले दिखेंगे, और आप नरम मिजाज दिखेंगे, एक मुअल्लिम दिखेंगे, अल्लाह के नबी एक फातह के रूप में भी दिखेंगे, कामयाबों कामरान के रूप में भी दिखेंगे। एक अच्छा कायद कौन होता है? अल्लाह के नबी के वजूद में ये आपको दिखेगा, कैसे साथियों की खताओं से दरगुजर करने वाले दिखेंगे और कैसे लोगों की गलतियों के बावजूद भी उनको साथ लेकर उनसे मशवरे करते वक्त हुए दिखेंगे, कैसे नरमी का आप मजमुआ थे। आइए ज़रा इन सारी बातों की रोशनी में प्यारे नबी के बारे में कुरान पाक क्या कहता है। और यहाँ आपको ग़ज़वे ओहद का किस्सा मिलेगा, तो यहाँ नबी सल्लम के बाहसियत आयत होने और फिर इतनी तकलीफ़ों से गुजरने के बावजूद अखलाक के आला नमूना होने का तस्करा मिलेगा। तो इन आयात पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुख भी हो रहा है आगे बीच में, तो उस पे बात करेंगे नबी सल्लम के अखलाक की। आपका अखलाक कैसा था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी अज़ीज़ बीवी थी, अल्लाह के नबी सल्लम उनके पास बैठे थे। ग़ज़वे उहद गुजर चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दावत देते हुए और हक का दिफा करते हुए और दुश्मनान इस्लाम के जुल्म व सितम और जबर व कहर का मुकाबला करते हुए गुजरी। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से एक अनोखा सवाल किया, ऐ मेरे आका, क्या आप पर उहद के दिन से ज़्यादा भी कोई सख्त और संगीन दिन गुजरा है? सवाल बड़ा मानी खेज और अहम था। उहद के मैदान में मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ था, और आपको यहाँ ये किस्सा इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप अगली आयतों को कान लगाकर सुने कि इस्लाम के रास्ते में किस किस मुश्किल से मेरे प्यारे नबी गुजरे, फिर भी सब्र और इस्तकामत के पहाड़ बने रहे। इसी जंग में सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हो का गम कभी भुला देने वाला नहीं था। खुदा आपके अपने दो दांत मुबारक शहीद हुए, आप शदीद जख्मी होकर गिर गए, मगर आप पर ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन गुजर चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को जवाब देते हुए फरमाते हैं, हाँ आयशा, तुम्हारी कौम के हाथों मुझे जिन मसाइब का शिकार होना पड़ा, इनमें सबसे मुश्किल और संगीन दिन वो था जब मैं इस्लाम की दावत पेश करने के लिए ताइफ किया था। ये सही बुखारी की रिवायत 3231 है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर अब आपको आपके अखलाक का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जिन्होंने आपको सताया, आप पे पत्थर फेंके, आपके पीछे ओबाश लड़कों को लगा दिया, आपने उनके लिए भी बद दुआ ना की और कहा कि शायद इनकी नस्लों में से ही अल्लाह ताला किसी को चुन लेगा। और वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम उठे और फिर आपके सिंध को फतह कर गए। तो आइए इन सारी बातों की रोशनी में आयत नंबर 121 से आगे सुनते जाएं, और ये है वो ट्रेनिंग कोर्स यानी पूरे पारे का उरूज, इमादुद्दीन की तरह इमादुद पारा। ये आयते हैं ग़ज़वे उहद का किस्सा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता अल्लाह के नबी ने इतनी जंगें क्यों लड़ी, तो इंशाल्लाह आज थोड़ी सी इस पे बात होगी और आगे होती ही रहेगी। आगे देखिएगा आप सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह मोहम्मद, सूरह फ़त और बहुत सारी सूरतों में आपको नबी का ये रूप दिखेगा। वइस ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिनीन मक़ाइद लिल्क़िताल, ऐ नबी उस वक्त को भी याद कीजिए जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने और जानने वाले था। आयतों के साथ अगर रिलेट करना है तो साथ ही लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन। टीम बिल्डिंग में बहुत अहम चीज़ है लोगों को उनकी जगह पता हो और उनके काम पता हो, उनके मुकाम पता हो, उनको अपना डोमेन पता हो। क्योस कहाँ आता है जब पता ही नहीं, एवरी बॉडी सम बॉडी नो बॉडी। दूसरी बात इस आयत से पता चली, सुबह सुबह उठना, दीन के लिए सुबह सुबह निकलना इस बात की दलील है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन। और नींद बड़ी प्यारी होती है सुबह की। अल्लाह के नबी अपने घरों को अपनी बीवियों को छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए निकले, यहाँ अपने लिए अमल का नुक्ता लिख लें। दीन के किसी भी तकाजे के लिए अगर सुबह सुबह उठना पड़े तो दिल से खुश होंगी कि आज मुझसे ये सुन्नत पूरी हो गई, और इसी तरह से रातों को जागना पड़े तो भी। फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपने घर को देखिए, मेरा घर ऑर्गेनाइज है, मेरी अलमारियाँ कैसी हैं, मेरे ड्रॉ कैसे हैं, क्या मेरे घर में रहमत के फरिश्ते आते होंगे, गंदगी के भभोके तो नहीं, बदबू तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें नबी की ज़ाती ज़िंदगी से आपको एक कायद होने के नाते भी दिखती हैं। अब आगे मैदान जंग की कुछ बातें। इस हम्मताई फतानी मिन को मन तफशला, जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी थी, अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है। नोट कर लीजिए, ओहद से पहले शौत के मुकाम पर अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर जब अलग हो गया, अब 1/3 गिरोह निकल जाए तो बाकी लोगों के अंदर भी थोड़ी सी बेदिली पैदा होती है। दो गिरोह थे, जो भी तुमको छोड़ दीजिए, उनके दिल में भी आया कि हम भी इनको छोड़ दें, सब छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ दें, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ दिया, जमा दिया। लिख लीजिए, जो दिल से आपका अपना होता है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, बल्कि जब दूसरे छोड़ रहे हो ना तो वो और आपके करीब आ जाता है और आपको और दिल से लगा लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सहाबा की बहुत मोहब्बत थी। आप हर उस बंदे से मोहब्बत करते थे जो खलूस के साथ दीन का काम कर रहा होता था, लिहाजा हर एक आपके साथ जाती उन्स महसूस करता था। हर एक को लगता था कि आप सबसे ज्यादा उन्हीं से मोहब्बत करते हैं। तो ये दो कबीले बाद में फख्र किया करते थे कि देखो, अल्लाह ने हमारा तذکرہ तो कुरान में किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह उन दोनों का दोस्त है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इखलास दे, और कभी भी खैर के नाम पे रास्ते में कोई अगर फितना आ जाए तो हम खैर को ना छोड़े, दीन को ना छोड़े। फिर आगे फरमाया, और इसी की पाक जात पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। ओहद के तनाजर में थोड़ा सा तज़किरा बदर का, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्ला, जंगे बदर में अल्लाह ताला ने आने इस वक्त तुम्हारी मदद फरमाई थी जबकि तुम नहायत गिरी हुई हालत में थे, इसलिए अल्लाह ही से डरो ना किसी और से, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो और ये शुक्रगुजारी बायसे नुसरत व इमदाद हो। जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, नोट कीजिए, लीडर्स का काम हौसलों को गिराना नहीं, हौसलों को बढ़ाना होता है, क्या कह रहे थे? क्या आसमान से 3,000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह ताला का तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफी ना होगा? क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र करो, परहेजगारी करो और ये लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जाएं, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद 5,000 फरिश्तों से करेगा जो निशानदार होंगे, और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए है। वरना असल हकीकत क्या है, इसको नोट कीजिए, वमा जालहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मईन कुलूबकुम बिही वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमत वाला है। सब की खुशफहमियां दूर कर दी, तुम हो तुम नहीं हो, अल्लाह के काम होते रहेंगे। अल्लाह फरिश्तों को नहीं, तुम्हें भी ना ले और अपने दीन को फैला दे, लकली मुमकिन है। यहाँ एक जुमला लिख लीजिए, वो काम जो अल्लाह ने पिछली कौमों के साथ अपनी आसमानी आफात के जरिए किया, किसी पे तूफान भेजे, किसी पे हवाएं भेजी, किसी पे पत्थर भेजे, वही काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से सहाबा की तलवारों के जरिए लिया, क्योंकि ये आखिरी नबी थे, आखिरी कौम थी। लिहाजा अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह ना फरिश्तों का मोहताज है ना अल्लाह इंसानों का मोहताज है। यहाँ एक हल्की सी इसलाह कर लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं गज़वे बदर में इसलिए फतह हुई क्योंकि फरिश्ते उतरे। नहीं, अल्लाह कहते हैं ये तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए किया था, असल मदद तो अल्लाह की तरफ से। बंदा खड़ा हो जाए, अल्लाह अपनी मदद करता रहता है। तन्हा चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इखलास के साथ खड़े हो जाइए, टूटी हुई तलवारें लेकर जाइए, अल्लाह उनको चमकती हुई तलवारों में बदल देगा, उकाशा की तलवार की तरह। हम इसबाब को रोते रह जाते हैं, हाय इस्लाम के पास कुछ नहीं, हाय हमारे पास कुछ नहीं, हाय ये पैसे कहाँ से आएंगे, हाय ये स्पॉन्सर कौन करेगा। अल्लाह कहते हैं पीछे रो, मेरी तरफ नजरें लगाने वालों को मैं कभी बंदों के सामने शर्मिंदा और शर्मसार नहीं करता। फिर अल्लाह ताला ने ये मदद की क्यों, इसका जवाब आयत नंबर 127 में देख लीजिए। ये अल्लाह के कवानीन है, इनको नोट कीजिएगा। ली यक्ता तरफ मिन अल्लज़ीन कफरू, इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह ताला काफिरों की एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ऐ पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो इनकी तौबा कबूल कर ले या अजाब दे, क्योंकि वो जालिम है। इसको भी हाईलाइट कीजिए, अकीदे का मामला है। लैस लक मिन अल अम्र शैउन, अल्लाह जो चाहे वो होता है, रसूल का भी मुकाम बता दिया। तो ये कहना जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे, इस जुमले की इसलाह कर दी गई इसमें के जो भी होता है अल्लाह ही के हुक्म से होता है, क्योंकि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अजाब करे, अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है।